दूसरा सैमुअल अध्याय 12। जब तक नाथा नबी उसके पास नहीं आया था और दाऊद सोचने लगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अध्याय 12 पद 1 से लेकर 6 तक। तब यहोवा ने दाऊद के पास नाथान को भेजा और वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वो उसके यहां उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वो उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोर में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वो उसकी बेटी के समान थी। वो अपनी भेड़ से बहुत प्रेम रखता था। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों वो गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नाथन से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको वो भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। उसने दाऊद आगे बढ़कर उस मनुष्य के न्याय की घोषणा कर दी। जब वो कह चुका, अध्याय 12 पद 7 से लेकर 9 तक। तब नाथन ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। तब वो कहता हुआ चला गया, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इसराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शौल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इसराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था, दाऊद मैंने तुझे सब कुछ दिया, मैंने तुझे राज्य दिया, मैंने तुझे पत्नियां दी, मैंने तुझे इसराइल और यहूदा दोनों दिया, और अगर ये कम था तो मैं तुझे अभी भी बहुत कुछ दे सकता था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? दाऊद, जब परमेश्वर ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया था, तब तूने परमेश्वर की आज्ञा को क्यों तुझ जाना? जब परमेश्वर तेरे साथ इतना अच्छा था तो तूने ऐसा क्यों किया? हम भी, जब परमेश्वर हमारे साथ इतना अच्छा है तो हम उसको मान क्यों नहीं देते या उसका गुणगान नहीं करते, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उससे संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्यों हम कभी कभी ज्यादा के लिए भागते हैं जबकि हमारे पास पहले से ही बहुत है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं? दाऊद, तुम्हारे पास इतनी सारी पत्नियां थी, क्यों तुमने दूसरे आदमी की पत्नी को छीना या लिया? क्यों तूने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना या तिरस्कार किया या उसकी अपेक्षा की? अध्याय 12 पद 10 से लेकर 13 तक। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हिती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वे दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो वो काम छिप कर किया, पर मैं ये काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नाथान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नाथान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तब उस आदमी के लिए दाऊद का न्याय था, उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। दाऊद के लिए परमेश्वर का न्याय था, तुम नहीं मरोगे। दाऊद, तुम बिना सजा के नहीं छूटने वाले। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम पाप करो और परमेश्वर से ये अपेक्षा करो कि वो तुम्हें संपूर्ण रूप से छोड़ दे। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह का गलत अर्थ लगाते हैं। पौलुस ने उनके बारे में कहा जो कहते थे, हम स्वतंत्र रूप से पाप करें ताकि अनुग्रह भरपूर हो, क्योंकि अगर पाप भरपूर होगा तो अनुग्रह उमड़ेगा। तो आओ हम स्वतंत्रता से पाप करें ताकि अनुग्रह भी उमड़ सके। परमेश्वर ने कहा है कि सब पापी है, अतः अगर मैं पाप करता हूं तो मैं केवल ये साबित करता हूं कि परमेश्वर सत्य है। अब परमेश्वर मेरा न्याय क्यों करेगा, जबकि मैं तो वही साबित कर रहा हूं जो परमेश्वर ने कहा था कि सब मनुष्य पापी है। मैं तो सिर्फ परमेश्वर के सत्य को साबित करने में सहायता कर रहा हूं। पौलुस कहता है, इस तरह का दर्शन ज्ञान या तत्व ज्ञान सिर्फ नरक दंड है। हर वो ज्ञान जो परमेश्वर के अनुग्रह के नाम पर आपको पाप में ले जाता है, निंदनीय ज्ञान है। पत्रस ने भी पौलुस के शब्दों को दोहराया है, और हां, पौलुस का प्रचार परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार था, जो एक अद्भुत सुसमाचार है। पत्रस बताता है कि कैसे लोग इस अनुग्रह के सुसमाचार को अपनी स्वयं की कामुकता के लिए वस्त्र की तरह बदलते हैं। उन पर विचार से पहले पाप करो और फिर परमेश्वर से क्षमा मांग लो, क्योंकि परमेश्वर सच में दयालु है, वो हमें क्षमा कर देगा। इस प्रकार लोग उस अनुग्रह और क्षमा की अपेक्षा के साथ परमेश्वर की व्यवस्था या कानून का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे कभी भी जानबूझकर अपनी मर्जी से इस आशा के साथ पाप नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर के पास आकर कहूं, ओ परमेश्वर, कृपया मुझे क्षमा कर, और इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह को पाने की आशा करूं। बाइबल कहती है, अपने आप को पाप से दूर रखो, जवानी की लालसाओं को त्यागो जो मनुष्य के प्राण को अनंत मृत्यु और नरक में भेजती है। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 में शरीर के काम के बारे में लिखा है, जो प्रकट है वे ये है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन आदि, और ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे लोग जो जानबूझकर मनमाने ढंग से इस विचार से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं कि मैं परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा और मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा, तो वे जान ले कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी इच्छा से हम पर आने के लिए नहीं बना है। पाप भले ही माफ किया गया हो, वो अपने निशान छोड़ देता है। पाप के कुछ ऐसे पक्ष है जिन्हें पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे कुछ निशान होते हैं जिन्हें पाप हमारे विवेक और जीवन में छोड़ देता है। क्षमा मिल जाने के बाद भी हमारा विवेक हमें इस बात के लिए कचोटता रहता है कि हमने परमेश्वर की नजरों में जानबूझकर अपनी मर्जी से पाप किया था, और उसे हम कभी नहीं भूल पाते। यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेचा था, तब वो चिल्ला रहा था, कृपया मुझे मत बेचो। वो रो रहा था, परंतु उसके भाइयों पर उसके रोने का कोई असर नहीं हुआ। उनका हृदय कठोर हो गया था। लगभग 20 साल बाद, जब वे मिस्र में थे और यूसुफ ने क्रोधित होने का स्वांग रचा, तब उनको अपना ये अपराध याद आया और वे आपस में कहने लगे कि हमने जो किया था वही हमारे ऊपर वापस आ रहा है। तुम्हें यूसुफ और उसका रोना याद है? आप अपने विवेक से नहीं बच सकते। परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तू मरेगा नहीं। फिर भी दाऊद, तेरे पापों के कारण ये बातें तो तुझ पर अवश्य बीतेगी। नबी के द्वारा दाऊद को जो सबसे बड़ा पाप उसे परमेश्वर ने बताया वो था, तूने परमेश्वर के दुश्मनों को निंदा करने का मौका दे दिया है। मैं समझता हूं कि एक विश्वासी के जीवन में पाप का सबसे दुखद फल वो होता है जब परमेश्वर के दुश्मन उसको देखकर परमेश्वर की निंदा करते हैं। ओह, वो मनुष्य तो ईसाई है ना? देखो उसने मेरे साथ क्या किया। वे आपको कामों के कारण, आपकी हरकतों के कारण परमेश्वर की निंदा करते हैं। हो सकता है कि आपने किसी को लेन देन में उजाड़ दिया हो और आप ये बात जानते हैं और आकर कहते हैं, ओह परमेश्वर, कृपया मुझे क्षमा कर देना। आप समझते हैं कि सब ठीक हो गया। आप किसी और के साथ वही चाल चलते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर से क्षमा मांग लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। इसलिए आज दुनिया के सामने मसीह का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि आज मसीही लोग परमेश्वर के समक्ष शुद्ध, धर्मी और पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं। इसलिए उसे सजा मिली और दाऊद के घर से तलवार कभी भी अलग नहीं हुई। उसके अपने लड़कों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। उसकी अपनी पत्नियों को खुलेआम बेइज्जत होना पड़ा था। उसका बच्चा जो पैदा हो चुका था मरने पर था। इन सब बातों ने दाऊद के जीवन पर बौछार की और दाऊद के अंदर की आग को बुझा दिया। उस समय से ही दाऊद के अपने घर में विपदाओं, विद्रोह और संकटों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। रोचक बात तो यह है कि दाऊद ने इन सब बातों से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि इनके आगे समर्पण कर दिया। उसने ये मान लिया, ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर का न्याय है। वो एक तरह से टूट चुका था। परंतु परमेश्वर का वचन दयालु था, तेरे पाप क्षमा हुए, तू ना मरेगा। इसी समय दाऊद ने भजन संहिता 32 लिखा था। ये दाऊद था जिसने नबी के ये शब्द सुनकर, तेरे पाप क्षमा हुए, तू ना मरेगा, लिखा, धन्य है। वो धन्य का अर्थ है, ओ कैसा प्रसन्न है वो। भजन संहिता 32 पहला और दूसरा पद। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आप देखिए, जब दाऊद अपने पापों को ढापने की कोशिश में लगा था, तब उसकी आत्मा में हर तरह का कपट भरा था। ऊरिया को वापस बुलवाना, उसको उसकी पत्नी के पास भेजने की कोशिश करना, ये सब उसकी छलपूर्ण योजना का हिस्सा था। आप जानते हैं, जब आप एक धोखेबाज इंसान होते हैं तब आपके अंदर एक डर, एक चिंता बनी रहती है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, किसी को पता ना चल जाए, और आप हर समय उसे ढकने में लगे रहते हैं। कौन मैं? मैं ही नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, परंतु आप जानते हैं, आप हर समय डरते रहते हैं। प्रसन्न है वो मनुष्य जो सीधा रह सके, जो ईमानदार रह सके, जो सही रह सके, जिसे कोई धोखा ना देना पड़े, छुपना ना पड़े और आनाकानी ना करना पड़े। जब मैं चुप रहा, अर्थात मैंने परमेश्वर के समक्ष अंगीकार नहीं किया था, जब मैं सब बातों को ढकने की कोशिश कर रहा था, तब दिन भर कहराते कहराते मेरे हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती गई। एक मनुष्य जिसे पापों की क्षमा तो मिल गई, परंतु फिर भी वो बताता है कि इस क्षमा से पहले उसके विवेक पर दोष की अनुभूति कितनी भारी थी। तब वो कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। उसके अंगीकार करने के फलस्वरूप क्षमा प्राप्त की इस भजन का अगला भाग है, और कितना आनंदित है वो मनुष्य जिसके पापों का बोझ हटा दिया गया, जिसके दोष को दूर कर दिया गया। परंतु एक मूल्य तो अभी भी चुकाना पड़ेगा। उसके घर पर तलवार अभी भी है, उसके लड़के विद्रोह करेंगे, उसकी पत्नियों को बेइज्जत होना है और उसके बच्चों को अभी भी मरना बाकी है। अध्याय 12 पद 15 से लेकर 23 तक। और जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया, और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। और 7 दिन तक दाऊद वहां भूमि पर पड़ा, विनती करता रहा और कुछ नहीं खाया। 7वें दिन बच्चा मर गया, और दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने तो कहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया, यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हां मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे पूछा, हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक बच्चा जीवित था तू जमीन पर गंदा भूखा प्यासा पड़ा था, और जब बच्चा मर गया तो तूने स्नान किया, तैयार हुआ और अब खाना मांग रहे हो, क्या बात है? उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वो मर गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि मृत्यु के प्रति दाऊद की सोच बहुत ठीक थी, इससे ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं। पद 23 में आगे लिखा है, मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। दाऊद शारीरिक मृत्यु के बाद के जीवन का विचार प्रकट करता है। उसे यह विश्वास है कि उसका बच्चा परमेश्वर के पास है, वो बचाया जा चुका है और एक दिन वो अपने बच्चे से जाकर मिलेगा, परंतु उसका बेटा वापस नहीं आ सकता। मैं वहां जाऊंगा जहां वो है, जबकि वो मेरे पास वापस नहीं आ सकता। हमारे बच्चे भी जो हमसे पहले मर गए, वे वापस नहीं आ सकते, परंतु हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब हम उनके पास जाएंगे। और अब बच्चे के मृत्यु के बाद पद 24 और 25 में, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और वो उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा और वो यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नाथान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीदाह रखा। अब यहां मेरे लिए ये रुचि की बात है कि परमेश्वर का हर बात में एक उद्देश्य होता है जो हम कभी नहीं समझ पाते। दाऊद और बेतशेबा से पहले परमेश्वर ने बच्चे को उठा लिया था। अपने दूसरे बच्चे का नाम उसने रखा यहोवा का प्रिय, और सच में ये दाऊद का भी प्रिय बेटा हुआ और दाऊद के बाद राजा बना। परंतु दाऊद का पाप बिना सजा के क्षमा नहीं हुआ था। उसे अपने पिछले अपराधों का मूल्य चुकाना था, जबकि सब बातों से परमेश्वर का अनुग्रह झलकता था। परमेश्वर ने दाऊद और बेतशेबा को दूसरा बेटा भी दिया, जिसे परमेश्वर ने यहोवा का प्रिय कहकर पुकारा।